ये अध्याय का आखिरी श्लोक स सर्वदी वृत्ति अनुभूतु सर्व आत्मा यता स्वप्न जनेक्षितैक तम सत्यम आनंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेयत आत्मपात Translation. One should concentrate his mind upon the personality of Godhead, who alone distributes himself in so many manifestations, just as ordinary persons create thousands of manifestations in dreams. One must concentrate the mind on him, the only all-blissful absolute truth. Otherwise, one will be misled and will cause his own degradation. तो यहाँ पे है शुकदेव गोस्वामी विराट रूप का वर्णन करके कंक्लूजन में हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को भगवान पे ध्यान करना चाहिए, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो अपने आप को अलग अलग रूप में विस्तार करते हैं। जैसे एक व्यक्ति हजारों सपना देखता है उसकी आयु भर में, वैसे ही भगवान अनेक सारे उनके अनगिनत मैनिफेस्टेशंस हैं, अनगिनत तरह से भगवान अपने आप को एक्सपांड करते हैं। तो ये पूरे अध्याय में देखा हमने कि कैसे ये पूरा ब्रह्मांड का अलग अलग सृष्टि, अलग अलग अंग भगवान का ही अंश है। तो इस तरह से शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं हर एक व्यक्ति को भगवान पे ध्यान करना है, और इस तरह से व्यक्ति भगवान पे ध्यान करेगा तब वो भ्रमित नहीं होगा और उसका पतन नहीं होगा। परपोर्ट, इन दिस वर्स द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज इंडिकेटेड बाय द ग्रेट गोस्वामी शिला सुखदेव। तो ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। हालांकि पूरे अध्याय में विराट रूप का वर्णन हुआ है, फिर भी सार है कि हर एक परिस्थिति में व्यक्ति को भगवान को याद करना है। He tries to impress upon us that instead of diverting our attention to several branches of self-realization, we should concentrate upon the personality of Godhead as the supreme object of realization, worship and devotion. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी सुझाव दे रहे हैं और हम सबको बता रहे हैं कि हमारा जो चित्त है, मन है, अलग अलग विषयों पे केंद्रित नहीं करना है, आत्म साक्षात्कार के अलग अलग विषयों पे भी केंद्रित नहीं करना है, हम सबको भगवान पे ही केंद्रित करना है, भगवान को हमारा ऑब्जेक्ट बनाना है, विषय बनाना है आत्म साक्षात्कार का, भगवान की आराधना करना है और भगवान की भक्तिमय सेवा करना है। सेल्फ रियलाइजेशन इज एज इट वर ऑफरिंग अ फाइट फॉर इटर्नल लाइफ अगेंस्ट द मटीरियल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड देयरफॉर बाय द इल्यूजरी ग्रेस ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी द योगी और द डिवोटी इज फेस्ड विद मेनी अल्यूरमेंट्स विच कैन एंटैंगल अ ग्रेट फाइटर अगेन इन द बॉन्डेज ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। तो आत्म साक्षात्कार पाना मतलब एक संग्रह है, एक युद्ध है, किसके साथ? माया के शक्तियों के साथ एक युद्ध है। और माया ये दुनिया में इतना सारा प्रलोभन करती है, और जनरली जो व्यक्ति और तीव्रता से युद्ध करता है, माया भी और आक्रमण करती है। जैसा एक कैदी है, जेल में है, तो उसका उसके ऊपर उसको सजा दिया जाता है, उस पर निग्रह रखा जाता है, पर अगर वो कैदी जेल से भागने का प्रयास करता है तब क्या होता है, उसके लिए सिक्योरिटी और टाइट होता है, उसके लिए और कष्ट दिया जाता है। तो वैसे ही ये दुनिया में हर एक व्यक्ति कैदी है माया के जेल में, इसलिए ये दुनिया को दुर्ग भी बोलते हैं, एक जेल की तरह, एक फोर्ट की तरह है। पर जो भक्त है या योगी है, ये माया के जो जेल है, कैद खाने से निकलने का प्रयास करता है, माया ऐसे भक्तों की जिंदगी में और कष्ट देती है, और प्रलोभन देती है इसको टेस्ट करने के लिए। अ योगी कैन अटेन मिराकुलस सक्सेसेस इन मटीरियल अचीवमेंट्स सच एज अनिमा एंड लगीमा बाय विच वन कैन बिकम मोर माइन्यूट देन द माइन्यूटेस्ट और लाइटर देन द लाइटेस्ट ऑल इन द ऑर्डिनरी सेंस मे अचीव मटीरियल बेनिडिक्शंस इन द शेप ऑफ वेल्थ एंड वुमेन। तो माया कैसे प्रलोभन करती है भक्त को और योगी के जिंदगी में, बहुत सारे चीज देती है या उपलब्धियां देती है, आप इसी से संतुष्ट हो जाओ, और योगी और भक्त इसी में संतुष्ट हो गया तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो कभी कभी योग के मार्ग में अनिमा करके एक शक्ति है, अनिमा मतलब छोटे से छोटा बनना, या लगीमा, लगीमा मतलब बहुत हल्का बनना, ये सब अलग अलग योगिक शक्तियां हैं। या माया ऐसे जो योगी है उसको धन देगी, सुंदर स्त्री देगी, बोलेगी कि इस पर ही संतुष्ट हो जाओ, अगर योगी को लगता है यही सार है, मेरा योग सफल हो गया क्योंकि मुझे धन मिल गया या सुंदर स्त्री मिल गया, तब वो आगे भटक आगे जा नहीं पाएगा, इधर ही रुक जाएगा उसका जो गति है। वन इज बॉन्ड अगेन सच अल्यूरमेंट्स बिकॉज एंटैंगलमेंट अगेन इन सच इल्यूजरी प्लेजर मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ द सेल्फ एंड फर्दर इम्प्रिजनमेंट इन द मटीरियल वर्ल्ड। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वॉर्न कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं हम सबको कि अगर हम भगवान पे ध्यान नहीं करेंगे तब क्या होगा, हमारा पतन होगा, क्योंकि हमको किसी न किसी चीज़ पर ध्यान करना है। भगवान पे ध्यान केंद्रित नहीं होगा, मन केंद्रित नहीं होगा, तो हमारा मन और ध्यान है माया पे केंद्रित होगा, और ये करने से हमारा पतन होगा, और ये जन्म मृत्यु के चक्कर में हम अलग अलग शरीर लेते रहेंगे। By this warning, one should follow one's vigilant intelligence only. तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे सावधान कर रहे हैं हमको और हम सबको चेतावनी दे रहे हैं कि हम सबको बहुत विजिलेंट होना है, बहुत ध्यान से भक्ति करना है। जैसे प्रभुपाद ये युद्ध का उदाहरण दे रहे हैं, अगर दो पार्टी है और युद्ध चल रहा है, हर एक व्यक्ति को सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि सावधान नहीं रहेगा तो दूसरा व्यक्ति आगे आक्रमण करेगा। तो ये माया के युद्ध में सावधान रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। द सुप्रीम लॉर्ड इज वन एंड हिज एक्सपेंशंस आर वेरियस। तो भगवान एक है पर भगवान के अनगिनत अंश हैं, या अनगिनत प्रकार से भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। ही इज देयरफॉर द सुपर सोल ऑफ एवरीथिंग। इसलिए भगवान हर एक चीज के और हर एक व्यक्ति के परमात्मा है, हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में है, और हर एक ये दुनिया के कण कण में भी भगवान परमात्मा के रूप में है, तो जो धरती है, समुद्र है, ये सब में भी भगवान निवास करते हैं। इसीलिए ये पूरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं कि कैसे हमको हर एक चीज में भगवान का कनेक्शन, भगवान के साथ संबंध ढूंढना इम्पोर्टेंट है। सीइंग एवरीथिंग इन कनेक्शन विद कृष्णा, पूरे दुनिया में रहते हुए भी भगवान का संबंध देखना। When a man sees anything, he must know that his seeing is secondary and the Lord seeing is primary. तो जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, हमको समझ में आना चाहिए हमारा जो दृश्य है सेकेंडरी है, पहला दृश्य क्या है, भगवान का है। जैसे ये अध्याय में हमने देखा भगवान बोलते हैं भगवान के आंखें सूरज की तरह है। अगर भगवान सूरज की किरणें किसी चीज पे नहीं गिरेगी, अगर हमारे पास आंख भी है वो चीज को हम देख नहीं पाएंगे। मतलब हमको देखने के लिए पहले भगवान को देखना पड़ेगा वो चीज को। भगवान का जो दृश्य पड़ेगा उसके ऊपर हम देख सकते हैं। वन कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट द लॉर्ड्स हैविंग फर्स्ट सीन इट। तो ये तरीका है जानने के लिए कि हमको देखने का भी शक्ति नहीं है। अगर भगवान की अनुमति नहीं है और ये सूरज और चंद्र नहीं रहेगा तो अभी हम किसी चीज को देख भी नहीं सकेंगे। दैट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द वेदास एंड उपनिषद्स। सो वॉट एवर वी सी और डू, द सुपर सोल ऑफ ऑल एक्ट्स ऑफ सीइंग और डूइंग इज द लॉर्ड। इसलिए वेद और उपनिषद ये बताता है जो भी चीज हम देखते हैं या करते हैं वो भगवान की अनुमति से ही होता है। दिस थियरी ऑफ साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल सोल एंड द सुपर सोल is propounded by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu as the philosophy of Achintya Veda Abheda Tattva. तो इसको चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्धांत सिखाया है। सिद्धांत क्या है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व, साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। ये दुनिया भगवान के साथ एक भी है और अलग भी है। हम सब भगवान के अंश भी हैं, भगवान के जैसा हमारा गुण भी है और हम अलग भी हैं। साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। द विराट रूप और द जाइगेंटिक फीचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इंक्लूड्स एवरीथिंग मटीरियली मैनिफेस्टेड एंड देयरफॉर द विराट और जाइगेंटिक फीचर ऑफ द लॉर्ड इज द सुपर सोल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। तो ये पूरे अध्याय में विराट रूप या विश्वरूप का वर्णन आ रहा है। तो ये विश्वरूप में सब कुछ है, सब कुछ भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी। हर एक देवता, हर एक जीव ये विराट रूप में इंक्लूडेड है, समाहित है। इसलिए ये जो विराट रूप है ये पूरे ब्रह्मांड का आत्मा है। जैसे हमारे शरीर का आत्मा होता है वैसे ही ये पूरे ब्रह्मांड के आत्मा विराट पुरुष है। द विराट रूप ऑफ द जाइगेंटिक फिगर ऑफ द लॉर्ड इंक्लूड्स एवरीथिंग मटीरियली मैनिफेस्टेड एंड देयरफॉर द विराट और जाइगेंटिक फिगर ऑफ द लॉर्ड इज द सुपर सोल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। But the Virat Rupa is also the manifestation of Narayan or Vishnu, and going further on and on, one will eventually see that Lord Krishna is the ultimate super soul of everything that be. तो एक दृष्टिकोण से ये विराट रूप भगवान का भौतिक रूप है, ब्रह्मांड का रूप है, पर हम जानते हैं कि जो भी भौतिक चीज है अल्टीमेटली भगवान से ही आता है, नारायण से आते हैं और नारायण कृष्ण से आते हैं। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, हर एक चीज का कनेक्शन कृष्ण के साथ है। तो इसलिए कृष्णमयी ये भौतिक दुनिया को भी कृष्ण के संबंध में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी अंतिम श्लोक में बता रहे हैं हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपना जो चित्त है, ध्यान है, पूरे तरह से भगवान में लगाना। द कंक्लूजन इज दैट वन शुड अनहेजिटेटिंगली बिकम अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा और फॉर दैट मैटर हिज प्लेनरी एक्सपांशन नारायण एंड नो नन एल्स। तो सारांश है विराट रूप के अध्याय का सारांश क्या है, हर एक व्यक्ति को विराट रूप के स्तोत्र। विराट रूप कहाँ से आता है? भगवान से ही आता है, कृष्ण से। इसलिए हर एक व्यक्ति को बिना संकोच के कृष्ण की आराधना या नारायण की आराधना करनी चाहिए। तो ये सार है और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। In the Vedic hymns, It is clearly said that first of all Narayan cast a glance over matter and thus there was creation. तो वैदिक शास्त्रों में हमारे वैदिक ग्रंथों में ये वर्णन आता है कि ये सृष्टि के पहले जब ब्रह्मा जी नहीं थे, जब शिव जी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ नारायण थे और नारायण ने भौतिक जो पदार्थ है महत्त्व पे अपना दृष्टि डालते हैं और उससे सृष्टि शुरू होता है. इन द वैदिक ग्रंथ इट इज क्लियरली सेड फर्स्ट ऑफ ऑल नारायण कास्ट अ ग्लांस ओवर मैटर एंड थस देयर वाज क्रिएशन. बिफोर क्रिएशन देयर वाज नीदर ब्रह्मा नॉर शिवा, व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स. तो ये सब वैदिक श्लोक हैं, वैदिक ग्रंथों में ये श्लोक आते हैं कि सृष्टि के पहले ब्रह्मा भी नहीं थे, शिव जी भी नहीं थे, सिर्फ नारायण है. ब्रह्मा भी नहीं है, शिव भी नहीं है, तो बाकी लोगों को क्या बोलना, मतलब अलग से देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है. भगवान कृष्ण या नारायण की पूजा किया तो काफी है. श्रीपाद शंकराचार्य हैज डेफिनेटली एक्सेप्टेड दिस दैट नारायण इज बियॉन्ड द मटीरियल क्रिएशन एंड दैट ऑल अदर्स आर विदिन द मटीरियल क्रिएशन. तो श्रीपाद शंकराचार्य वो भी बोलते हैं नारायणो परो व्यक्तात्. तो ये भौतिक दुनिया के परे, सृष्टि के परे कौन है, नारायण है और बाकी सब ये सृष्टि के अंदर है. शिवजी, ब्रह्मा जी, बाकी सब देवता सृष्टि के बाद आते हैं. तो सृष्टि के पहले कौन है, नारायण. द होल मटीरियल क्रिएशन देयरफॉर इज वन विद एंड डिफरेंट फ्रॉम नारायण साइमल्टेनियसली एंड दिस सपोज द अचिंत्य भेद अभेद तत्व द फिलोसफी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. तो इसका मतलब है ये जो भौतिक दुनिया है क्योंकि भगवान से आता है इसलिए भगवान के साथ एक भी है और अलग भी है. साइमल्टेनियस वनडेस एंड डिफरेंस, इसको अचिंत्य भेद अभेद तत्व बोलते हैं. तो ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है. बींग एन एमिनेशन फ्रॉम द ग्लांसिंग पोटेंसी ऑफ नारायण द होल मटीरियल क्रिएशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम. तो भगवान से अभिन्न कैसा है ये भौतिक दुनिया, क्योंकि भगवान के दृष्टि से ही आया है तो इसलिए ये भौतिक दुनिया भगवान से अभिन्न है. बट बिकॉज इट इज द इफेक्ट ऑफ हिज एक्सटर्नल एनर्जी बहिरंग माया एंड इज अलू फ्रॉम इंटरनल पोटेंसी आत्म माया द होल क्रिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम हिम एट द सेम टाइम. तो भगवान से एक है क्योंकि भगवान ने दृश्य डाला है इसलिए सृष्टि हुआ है, पर भगवान से अलग है क्योंकि भगवान के अलग अलग शक्तियां हैं. ये जो भौतिक दुनिया है बहिरंग शक्ति है और भगवान का जो इंटरनल पोटेंसी है आध्यात्मिक शक्ति है उसको आत्ममाया या अंतरंग शक्ति बोलते हैं. इसलिए ये दोनों साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, एक भी है फिर भी अलग है. द एग्जाम्पल गिवन इन दिस वर्ड्स वेरी नाइसली इज दैट ऑफ अ ड्रीमिंग मैन. तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक में बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं किसका, जो व्यक्ति सपना देख रहा है, नींद में सपना देख रहा है. द ड्रीमिंग मैन क्रिएट्स मेनी थिंग्स इन हिज ड्रीम एंड थस ही हिमसेल्फ बिकम्स द एंटैंगल्ड सीयर ऑफ द ड्रीम एंड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द कॉन्सिक्वेंसेस. व्यक्ति सपने में बहुत सारे चीज देखता है और कभी कभी सपने में अपने आप को देखता है और एक रूप में और उसमें वो बन जाता है, उसमें अलग अलग भाव एक्सपीरियंस करता है. दिस मटीरियल क्रिएशन इज ऑल्सो एग्जैक्टली अ ड्रीम लाइक क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड बट ही बींग अ ट्रांसेंडेंटल सुपर सोल इज नीदर एंटैंगल्ड नॉर अफेक्टेड बाय द रिएक्शंस ऑफ सच अ ड्रीम लाइक क्रिएशन. तो जैसे एक व्यक्ति रात में सपना देखता है, सपने में शायद वो महल बनाता होगा पर सपने का ही महल है, असलियत में उसका कुछ वैल्यू नहीं है. भगवान भी जब योग निद्रा में रहते हैं, भगवान का सृष्टि कब होता है, भगवान महाविष्णु कारण सागर में योग निद्रा में है, उनका सपना चल रहा है और वो सपने में सृष्टि कर रहे हैं और उनके सपने के अंदर हम हैं और हम असलियत देख रहे हैं. क्योंकि भगवान का जो सपना है, भगवान अपने सपने में भी सृष्टि कर सकते हैं पर हम हमारे सपने में सृष्टि नहीं कर सकते. तो ये फर्क है, भगवान भी सपना देख रहे हैं और हम भी सपना देखते हैं रात को, पर फर्क क्या है, भगवान के सपने में अलग अलग चीज बना सकते हैं फिर भी वो उनके सृष्टि में वो फंसते नहीं है, वो बनते नहीं है. ही इज ऑलवेज इन दिस ट्रांसेंडेंटल पोजिशन बट एसेंशियली ही इज एवरीथिंग एंड नथिंग इज अपार्ट फ्रॉम हिम. तो भगवान का स्तर हमेशा दिव्य रहता है। हालांकि भगवान से सब कुछ आता है, ये भौतिक दुनिया भी आता है, पर भगवान हमेशा उससे अलग है। इसलिए हमने ये देखा कि अल्टीमेटली भगवान से सब कुछ आता है, पर सब कुछ भगवान नहीं है। ये भौतिक दुनिया भगवान से आता है, इसलिए हम भगवान का कनेक्शन देख सकते हैं, पर ये भौतिक दुनिया के हर एक चीज का हम पूजा नहीं करते, उसको सम्मान देख सकते हैं, पर पूजा सिर्फ भगवान का होता है। एज अ पार्ट ऑफ हिम वन शुड देयरफॉर कॉन्सेंट्रेट ऑन हिम ओनली विदाउट डिविएशन, अदरवाइज वन इज श्योर टू बिकम ओवरकम बाई द पोटेंसीज ऑफ मटीरियल क्रिएशन वन आफ्टर अनदर। इसलिए ये अध्याय का सारांश में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, हर एक व्यक्ति को, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, हम सबका कर्तव्य है कि हमको सिर्फ भगवान पे ध्यान करना है विदाउट डिविएशन, बिना मन को भटकाए और किसी विषय पे, नहीं तो हम ये भौतिक दुनिया के अलग अलग सृष्टि में फंसते जाएंगे। और ये भौतिक दुनिया का सृष्टि अलग अलग सृष्टि होता रहता है, अलग अलग रूप आते रहते हैं हमको आकर्षित करने के लिए। इट इज कन्फर्म्ड इन द भगवद्गीता 9.7 एज फॉलोस, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि अहम्। ओ सन ऑफ कुंती, एट द एंड ऑफ द मिलेनियम एवरी मटीरियल मैनिफेस्टेशन एंटर्स इनटू माय नेचर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ अनदर मिलेनियम बाय माय पोटेंसी आई अगेन क्रिएट। तो अगर हम भगवान पे ध्यान नहीं करेंगे तब क्या होगा, जैसे भगवान ये श्लोक में बोल रहे हैं गीता के, सृष्टि के अंत में जब प्रलय होता है, हर एक व्यक्ति भगवान के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और फिर से जब सृष्टि होता है फिर से हम बाहर आते हैं। इस तरह से बार बार अलग अलग शरीर हम लेते रहेंगे। तो ह्यूमन लाइफ हाउएवर इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ दिस रिपीटेशन ऑफ क्रिएशन एंड एनिहिलेशन। तो मनुष्य जन्म किसके लिए है, ये जो सृष्टि और प्रलय है, ये बार बार जो चल रहा है उससे बाहर निकलने के लिए, ये जो जन्म मृत्यु, ये जो बार बार हम साइकिल पे घूम रहे हैं, इससे बाहर निकलने के लिए मनुष्य जिंदगी है। इट इज अ मीन्स वेयर बाई वन कैन एस्केप द लॉज एक्सटर्नल पोटेंसी एंड एंटर इन टू इज इंटरनल पोटेंसी। तो मनुष्य जन्म एक मार्ग है, एक अवसर है भगवान ने दिया हम सबको, भगवान की जो भौतिक शक्ति है उससे बाहर निकल के हमको आध्यात्मिक शक्ति में जाना है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, ये पूरा भौतिक दुनिया एक कैद खाने की तरह है, तो मनुष्य जिंदगी किसके लिए है, ये कैद खाने से बाहर निकल के फ्री वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत में जाना है, जहाँ पे हम बिना शरीर के बंधन का, बिना मन और इंद्रियों के बंधन का, हम एक्चुअली स्वतंत्र होके रह सकते हैं। कल दशहरा है, हम सब जानते हैं सीता को रावण ने अपहरण करके ले गया। तो रावण कौन है, रावण मन है, मन और इंद्रिय है। रावण दशग्रीव, दस सर वाला मतलब दस इंद्रिय और मन रावण है। तो जैसे रावण ने सीता का अपहरण करके ले गया, राम से अलग करके एक समुद्र के बीच में रख दिया, तो हम सब सीता को कभी कभी जीव से भी तुलना होता है उदाहरण के रूप में, तो हम सब सीता की तरह रावण हमारे मन और इंद्रियों ने हम सबको अलग लेके बंदी बना के रखा है, जैसे सीता को बंदी बना के रखा था, हम सबको बंदी बना के रखा है। और बंदी कब बनती है, सीता क्यों बनती है, क्योंकि सीता का आकर्षण वो माया मृग के प्रति हुआ था, क्योंकि वो माया मृग के प्रति हुआ था, राम को भूल गई, राम थे उधर, पर उसको लगने लगा कि राम से ज्यादा माया मृग सुंदर है, इसलिए सीता ने राम को भेज दिया वह माया मृग पाने के लिए। और जब राम चले गए, पहले शुरुआत होता है माया मृग के साथ आकर्षण, राम को भेज देती है, लक्ष्मण को भेज देती है, उसके बाद रावण आता है और रावण अपहरण करके लेके जाता है। तो हम सब ये भौतिक दुनिया में फंस गए हैं सीता की तरह, पर हमारा मार्ग क्या है, हमारा भाग्य है कि हम सबके जीवन में हनुमान जी जैसे गुरु आए हैं संदेश लेके, जैसे राम ने हनुमान जी को भेजा था, हम सबके जिंदगी में गुरु आए हैं संदेश लेके, और ये संदेश को हम स्वीकार करेंगे और राम का भक्ति करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, तो तो राम आएंगे और सही में हमारे रावण का संहार करेंगे और हमारा उद्धार करेंगे। इसीलिए मनुष्य जिंदगी दिया है भगवान ने हम सबको, ये इसका हमको फायदा उठाना है, नहीं तो हम परमानेंटली ये आइलैंड में, जैसे सीता ये लंका के एक द्वीप में बंदी थी, हम परमानेंटली ये दुनिया में बंद के रहेंगे। तो हमको वापस राम के पास जाना है, जो जो गुरु का संदेश है उसको गंभीरता से लेना है और भगवान राम का भक्ति गंभीरता से करना है। तो ये दशहरा का मेडिटेशन है। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है। हम एक हफ्ते बाद हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, तो एग्जैक्ट डेट हम अनाउंस करेंगे बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।